अब काफी टाइम हो चुका था, मगर इकबाल अब तक वापस नहीं आए थे। नूर बेचैन होने लगी। उसने अपने अब्बा को फोन लगाया और चलते चलते बाहर लॉन में आ गई। कभी एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ, बार बार फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। उसी वक्त बेच वाला दरवाज़ा खुला और अरमान बाहर आया। नूर को देखकर वो पल भर को रुका। उसे अंदाज़ा नहीं था कि नूर उसे देख चुकी है, इसलिए वो नज़रें चुराकर अंदर की तरफ जाने लगा। लेकिन नूर चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने अरमान से कहा कि ऐसे घूरने से बेहतर है सामने वाले से सवाल ही कर लिया जाए। हेलो, अरमान ने अपनी आंखों पर लगी गॉगल्स उतारते हुए कहा। हाय, नूर ने जवाब दिया। तुम तो चली गई थी ना, अरमान ने हैरानी से पूछा। थोड़े दिनों के लिए ही आई हूँ, नूर ने सपाट लहजे में कहा। दो चार दिन रहूंगी, फिर चली जाऊंगी। अरमान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, धूप में यूं घूम घूम कर अपना रंग काला कर रही हो क्या? नूर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। आप हर दिन कुछ न कुछ कह देते हैं, उसने नाराज़गी से कहा। कभी मेरी आंखों के रंग पर, कभी बालों पर, अब मेरे चेहरे के रंग पर, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरमान ने झुंझलाकर अपने सिर पर हाथ मारा। अरे, मैं तो बस पूछ रहा था, उसने सफाई दी। ये नहीं कि तुम्हें यूं धूप में क्यों घूमते देख रहा हूँ। तभी दरवाज़ा फिर खुला और सादिया बाहर आ गई। उसकी नज़र दोनों पर पड़ी। नूर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और अरमान कुछ कहने को होठ खोल ही रहा था। तभी घर की मुलाजिम बाहर आती है। वो इधर उधर नज़र घुमाती हुई सीधे नूर के पास आती है और अदब से कहती है, नूर बीबी, बड़ी बेगम साहिबा ने याद किया है। ये कहते ही वो रुक जाती है। नूर एक पल के लिए चौंकती है, फिर बिना कुछ कहे सिर हिला देती है और अंदर की तरफ बढ़ जाती है। नूर के जाते ही लॉन में सिर्फ अरमान और सादिया रह जाते हैं। अरमान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कंधे उचकाए और बोला, ये लड़की भी ना, कितनी अजीब है। सादिया ने उसकी तरफ देखा और थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हें भी ताई अम्मी ने बुलाया है? अरमान ने हैरानी से पूछा। मुझे भी? हाँ, सादिया ने सिर हिलाया। चलो, दोनों अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर नूर सीधे रेहाना बेगम के कमरे में पहुंचती है। रेहाना बेगम बिस्तर के पास बैठी थी। उन्होंने नूर को देखा तो हल्की सी नरमी उनके चेहरे पर आ गई। आओ नूर, उन्होंने कहा। नूर पास जाकर खड़ी हो जाती है। रेहाना बेगम उसे एक पैकेट थमाती हैं। ये तुम्हारे लिए है, सूट है, नया। नूर ने पैकेट हाथ में लिया, जैसे यकीन ही ना हो पा रहा हो। हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आप दे रही हैं तो नया ली होगा ताई अम्मी। रेहाना बेगम ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, बस उसे ध्यान से देखती रहीं। नूर ने थोड़ी हिचक के बाद पूछा, अभी तक अब्बा नहीं आए? यूनिवर्सिटी जाना था ना, रेहाना बेगम ने जवाब दिया। रेहाना बेगम ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हें अरमान के साथ भेजती थी, लेकिन तुम अभी नहीं जाओगी। उनकी आवाज़ में सख्ती नहीं थी, लेकिन फैसला साफ था, वो सब देख चुकी थी। सुबह नूर ने रेहान के साथ जाने से भी इनकार कर दिया था। नूर ने बिना बहस किए कहा, अगर आप कहेंगी तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, रेहाना बेगम ने कहा, फिर बाद में चली जाना। नूर ने सिर झुकाया और कपड़ों का पैकेट लेकर चेंज करने चली गई। उसी वक्त दरवाजे पर अरमान आ गया था। उसने नूर को जाते हुए देखा, उसके हाथों में नया सूट, चेहरे पर अजीब सी खामोशी। अरमान वहीं खड़ा उसे देखता रह गया, जैसे उसके लिए ये सब समझ पाना आसान ना हो। बताइए ना, आप मुझे ही क्यों भेज रही हैं, अरमान ने हल्की नाराज़गी के साथ कहा। इसे आप फैज़ान के साथ यूनिवर्सिटी भेज दीजिए। असल में वो नूर को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। उसकी आवाज़ में छुपी बेचैनी ये बात साफ बयान कर रही थी। रेहाना बेगम ने उसकी बात सुनी और कुछ पल उसे देखते हुए चुप रहीं, फिर बेहद शांत लहजे में बोली, कोई बात नहीं, तुम ही इसे साथ ले जाओ। ये कहते हुए उन्होंने पास रखी एक स्लिप उठाई और अरमान की तरफ बढ़ा दी। और हाँ, रास्ते में ये काम भी कर लेना, ज्वेलर के पास मेरा एक सेट पॉलिश के लिए गया हुआ है, उसे लेते आना। अरमान ने स्लिप हाथ में ली और उस पर नज़र डाली। पढ़ते ही उसकी भौहें तन गई। डायमंड का सेट? उसने हैरानी से पूछा, किस लिए? रेहाना बेगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आखिर तुम्हारी जो डील फाइनल हुई है, उसका सेलिब्रेशन तो बनता है ना? फिर ठहरे हुए अंदाज में जोड़ा, उसी की तैयारी हो रही है। इस सेलिब्रेशन की क्या ज़रूरत है? अरमान ने तुरंत सवाल किया। क्यों नहीं है? रेहाना बेगम की आवाज़ अब और पक्की हो गई। बिल्कुल है। फिर उन्होंने अरमान की तरफ देखते हुए धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, और हाँ, इस सेट के बारे में रेहान या तुम्हारे ताया अब्बू, किसी को भी कुछ नहीं बताना, समझे? अरमान ने स्लिप को एक बार फिर देखा, फिर नज़र उठाकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इकबाल अपनी फूफी के घर पहुंचा। उस वक्त घर में फूफी की बेटी और उसका दामाद राशिद दोनों मौजूद थे। फूफी की बेटी नूर का सामान निकाल निकाल कर उसे समेट रही थी। इकबाल बाहर बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। वो चुप था, मगर उसके चेहरे से थकान झलक रही थी। जैसे ही वो चाय खत्म करके अंदर की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से राशिद की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। बहुत चालाक है ये, राशिद ने तंज भरे लहजे में कहा। चालाकी? कैसी बातें कर रहे हो? फूफी की बेटी ने हैरानी से पूछा। और नहीं तो क्या, राशिद ने बात आगे बढ़ाई। जानबूझकर उसने नूर को वहाँ रखा है। हमारी हालत देखो, छोटा सा घर, टूटी फूटी मोटरसाइकिल, अगर वहाँ रहेगी तो गाड़ियों में घूमेगी। असल में राशिद को नूर का वहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ से उसका मतलब फरीद खान के घर से था। नूर को देखकर ही उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। वो अंदर ही अंदर कुछ और ही प्लान बना रहा था। अब नूर को गाड़ियों में कौन घुमाएगा, फूफी की बेटी झुंझलाकर बोली। और किसी को इसकी जरूरत ही क्या है जिसकी इतनी खूबसूरत बेटी हो, राशिद ने बेशर्मी से कहा। उसके लिए गाड़ियों में घूमना कोई बड़ी बात नहीं होती। बरामदे में खड़ा इकबाल ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर अंदर ही अंदर उसका खून खौल चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि नूर को लेकर यहाँ रुकना अब और ज्यादा ठीक नहीं। तुम उनका सामान उठा उठा कर दे रही हो, राशिद ने अपनी बीवी से नाराजगी में कहा। तुम्हें इकबाल को समझाना चाहिए, जमाना बहुत खराब है, अपनी जवान बेटी को ऐसे ही किसी के घर छोड़ देना ठीक नहीं। उसकी बीवी ने पलटकर जवाब दिया, इस शहर में कौन सा इकबाल गाई का ऐसा दोस्त है जो नूर को ठीक से ना रखेगा। जैसे ही फूफी की तबीयत संभलेगी वो घर आ जाएगी, जिसकी इतनी खूबसूरत बेटी हो। राशिद अब भी बात को खींच रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव अब भी सही नहीं थे। इतना सुनते ही इकबाल गुस्से में कमरे के अंदर आ गया। जितनी गिरी हुई नजरें तुम्हारी हैं, उसने तीखे स्वर में कहा, उतनी तो किसी की भी नहीं होती। नहीं नहीं, इसका वो मतलब नहीं था, राशिद की बीवी तुरंत बोली, वो तो बस नूर की फिक्र कर रहा था। इकबाल की आंखों में गुस्सा और गहराता चला गया। किसे कितनी फिक्र है मुझे अच्छी तरह पता है, उसने सख्ती से कहा। जो लड़की इसकी बेटी की उम्र की है उस पर कैसी नजर रखी जाती है मैं सब समझता हूँ। आप मेरे शहर के बारे में गलत बोल रहे हैं, राशिद की बीवी ने ऊंची आवाज में कहा। गलत तो इसकी हरकतें हैं, इकबाल ने दो टूक जवाब दिया। हम नूर के भले के लिए ही ये सब कह रहे हैं, वो फिर बोली, मैं अपनी बेटी का भला क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इकबाल ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा। देखिए जी, मुझ पर कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, राशिद झूठी मासूमियत दिखाते हुए बोला। राशिद की बीवी की आवाज अचानक भर्रा गई। मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी अम्मी को अस्पताल में अकेला छोड़कर आई हूँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इकबाल ने एक पल भी और रुकना जरूरी नहीं समझा, उसने चुपचाप सामान उठाया और जाते हुए बस इतना कहा, आप अपनी बेटी को जहाँ रखना चाहें रखें और हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए।
ये कहकर वो वहाँ से निकल गया और पीछे रह गई एक भारी कड़वी खामोशी।